काल विभाजन की समस्या। साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, इन तीन कालों की चर्चा करते हैं। इन तीनों कालों में सामाजिक गठन का रूप क्या था, इसका विवेचन वे नहीं करते। यथा डॉक्टर सुकुमार सेन जब यह कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में बंगाल एक सुनिश्चित प्रादेशिक इकाई बन गया था, तब यह स्पष्ट नहीं होता कि 8वीं शताब्दी में उस प्रदेश के रहने वाले बंगाली जाति के रूप में गठित हो गए थे या नहीं। भारतीय विद्या भवन बम्बई से प्रकाशित द क्लासिकल एज में के आर श्रीनिवास आयंगार ने तमिल भाषा और साहित्य पर लिखा है। इस लेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि छठी या सातवीं शताब्दी में जो तमिल साहित्य रचा गया और क्लासिकल एज में रचा जाता रहा, वह उस समाज का साहित्य है जो जाति रूप में संगठित हो गया था या अभी लघु जाति अथवा गढ़ समाज के रूप में था। साहित्य अकादमी से अंग्रेजी में लिखे हुए और आकाशवाणी से प्रसारित निबंधों का एक संग्रह 1975 में प्रकाशित हुआ था। इसका नाम है लिटरेचर्स इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। निबंध चार खंडों में विभाजित है। पहला खंड भूमिका रूप है और चौथा खंड भारतीय साहित्य के विभाजन के बारे में है। दूसरे खंड में प्राचीन और मध्यकाल है और तीसरे खंड में आधुनिक काल है। प्रस्तुत प्रसंग में इन दूसरे तीसरे खंडों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। दूसरे खंड में कहीं भी इस समस्या का विवेचन नहीं किया गया कि जिस प्राचीन या मध्यकाल का उल्लेख है, उस काल में सामाजिक गठन का रूप क्या था। इसी प्रकार आधुनिक काल के निबंधों में कहीं यह समस्या प्रस्तुत नहीं की गई कि भारत की आधुनिक जातियों का निर्माण कब हुआ। साहित्य छोड़ दे, समाज का इतिहास लिखने वाले भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों का प्रयोग अस्पष्ट रूप में करते हैं। इंग्लैंड और यूरोप के इतिहासकारों ने यूनान और रोम की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता कहा। पूंजीवादी के अभ्युदय से जो इतिहास शुरू होता है, उसे आधुनिक अथवा नवजागरण काल कहा। इन दोनों कालों के बीच में जो कुछ बच रहा, वह मध्यकाल हो गया। यह विभाजन अवैज्ञानिक है। पहले तो जो काल यूनान के लिए उस प्राचीन युग है, पृष्ठ संख्या 42, वह इंग्लैंड के लिए प्राचीन युग नहीं हो सकता, क्योंकि उस युग में इंग्लैंड नाम का अस्तित्व नहीं था। उस प्राचीन युग के करीब 1000 साल बाद जब जर्मन कबीले ब्रिटेन में आकर बसे, तब इंग्लैंड अस्तित्वमान हुआ, तब उसके प्राचीन युग की शुरुआत हुई। किंतु इंग्लैंड के इस प्राचीन युग को इतिहासकार मजे से मध्यकाल की संज्ञा दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वयं यूनान का प्राचीन युग दो भिन्न व्यवस्थाओं वाले युगों को मिलाकर एक कर दिया गया है। पहला युग गढ़ समाजों का है, जिसमें होमर के काव्य रचे गए थे। दूसरा युग सामंती व्यवस्था का है, जब लघु जातियों का निर्माण हो चुका था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सोफोक्लेस आदि विचारक और साहित्यकार कबीलों के सदस्य न थे। एथेंस नगर यूनान की सामंती सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इसके साथ ही अन्य यूनानी राज्यों की अपेक्षा एथेंस ने व्यापार में विशेष प्रगति की थी। सामाजिक विकास क्रम में पुरातन गढ़ व्यवस्था को ऐसी सामंती व्यवस्था से मिला देना जिसमें व्यापार ने अभूतपूर्व प्रगति की हो, वैज्ञानिक कार्य नहीं हो सकता। कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि एथेंस की सभ्यता को यहाँ सामंती सभ्यता कहा गया है। वे कह सकते हैं यह सभ्यता दास प्रथा पर आधारित थी। समाज में दो मुख्य वर्ग थे, दास और उनके स्वामी। सामंती व्यवस्था में बड़े बड़े राजा, जमींदार, जागीरदार वगैरह होते हैं। ये सब एथेंस में कहाँ थे। सामंती व्यवस्था छोटे पैमाने की उत्पादन विनिमय व्यवस्था को कहते हैं, जिसका आधार कुटुंब आधारित दस्तकारी होती है। इस व्यवस्था के लिए बड़े बड़े सामंतों का होना अनिवार्य नहीं है। भारत के अनेक प्रदेशों में रैय तवारी भूमि व्यवस्था रही है, उसे सामंती व्यवस्था के बाहर न समझना चाहिए। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत समाज का यथेष्ट विकास हो जाने के बाद ही, मुद्रा तंत्र का यथेष्ट प्रसार हो जाने के बाद ही दासों का क्रय विक्रय संभव होता है। एथेंस में अल्प व्यय द्वारा विपुल श्रम कराने के लिए, बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर माल तैयार करने के लिए दासों का उपयोग किया गया था। एथेंस का समाज दासों और दासों के स्वामियों के बीच विभाजित था और वहां निर्धन जनों की स्थिति दासों से बहुत अच्छी न थी। इससे मिलती जुलती समाज व्यवस्था रोम की थी। यहाँ भी दासों का उपयोग होता था और समाज में दो मुख्य वर्ग धनी भूस्वामियों और निर्धन किसानों के थे। एथेंस की तरह रोम भी सामंती व्यवस्था का केंद्र था, पर रोमन सभ्यता का विकास उस समय हुआ जब एथेंस की सभ्यता ह्रास की अवस्था में थी। उसके उत्कर्ष काल में इटली के लोग गढ़ व्यवस्था वाली सामाजिक मंजिल से आगे न बढ़ पाए थे। पहले यूनान समाज की दो मंजिलें उनके पास, रोमन पृष्ठ संख्या 43, समाज की दो मंजिलें, इन सबको मिलाकर एक ही प्राचीन युग की संज्ञा दे दी जाती है। यदि किसी देश का इतिहास इस तरह लिखना हो कि सामाजिक विकास की मंजिलों पर ध्यान ही न दिया जाए तो प्राचीन काल नामकरण सही है। यदि साहित्य का इतिहास इस तरह लिखना हो कि वह सामाजिक विकास के संदर्भ से मुक्त दिखाई दे तब उक्त नामकरण उचित है, किंतु यदि देश के इतिहास के लिए, साहित्य के इतिहास के लिए सामाजिक विकास की मंजिलें महत्वपूर्ण है तो यह नामकरण और अध्ययन की रीति दोषपूर्ण है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में इतिहास का विभाजन तभी सार्थक हो सकता है जब प्राचीन काल का संबंध गढ़ व्यवस्था से जोड़ा जाए, मध्य काल का संबंध सामंती व्यवस्था से जोड़ा जाए और आधुनिक काल का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा जाए। चाहे तो भविष्य काल से समाजवादी व्यवस्था का संबंध जोड़ सकते हैं, किंतु इतिहास में काल विभाजन इस प्रकार सामाजिक विकास की मंजिलों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। प्रत्येक काल अथवा व्यवस्था के अनेक चरण होते हैं, वह बात अलग है। अब प्रश्न यह है कि भारत के इतिहास को समाज व्यवस्था के अनुसार कालक्रम के विचार से किस प्रकार विभाजित किया जाए। वैदिक काल गढ़ व्यवस्था वाले प्राचीन काल का अंतिम चरण है। इस चरण में उत्पादन का यथेष्ट विकास हो गया है। पूरे गढ़ के स्थान पर कुल अर्थात बड़े कुटुंब उत्पादन का आधार है। गढ़ समाजों के बीच यथेष्ट विनिमय का विकास हो चुका है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था प्रकट हो जाती है। इस तरह वैदिक काल गढ़ व्यवस्था वाले प्राचीन युग का अवसान काल है। इससे पहले हजारों साल का गढ़ व्यवस्था वाला युग बीत चुका है। इस देश की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से उस प्राचीन युग की बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं, किंतु उस ओर इतिहासकारों और भाषा विज्ञानियों का ध्यान नहीं गया। गढ़ व्यवस्था का जो अवसान बिंदु है वह उनके लिए प्राचीनता का प्रारंभ बिंदु है। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वेदों से पहले की है और वह द्रविड़ सभ्यता है। समाज व्यवस्था के विचार से वह किस युग में आती है? भारतीय इतिहास पर विचार करते समय सबसे पहले उस पर विचार क्यों न किया जाए? इस संबंध में यहाँ यह कहना है कि वैदिक सभ्यता का समय कल्पना द्वारा निर्धारित किया गया है। उसकी शुरुआत ईसा पूर्व 1200 से मानने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ वरो 1200 ईसा पूर्व वाला समय स्वीकार करते थे, किंतु कुछ समय पहले उन्होंने अपनी यह मान्यता बदल दी। 1973 की जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक पत्रिका की संख्या 2 में उन्होंने द प्रोटो इंडो पृष्ठ संख्या 44 एरियंस शीर्षक लेख प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि प्राचीन आर्यों का समय ईसा पूर्व 2000 तक और पीछे ले जाना चाहिए। 2000 ईसा पूर्व वाले काल को वह प्रोटो एरियन अथवा आदि आर्य काल कहते हैं। यह सारा उहा पोह ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की दोषपूर्ण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति का उल्लेख आगे संक्षेप में किया जाएगा। विवेचन में चाहे सिंधु घाटी सभ्यता को लिया जाए, चाहे वैदिक सभ्यता को, काल विभाजन के विचार से विशेष अंतर न पड़ेगा। सिंधु घाटी के नगर विकसित सामंती सभ्यता के केंद्र हैं, वे व्यापार के केंद्र हैं और व्यापार के लिए माल छोटे पैमाने की पद्धति से तैयार किया जाता है। सिंधु घाटी के नगर सामूहिक उत्पादन और वितरण वाले गढ़ समाजों के नगर नहीं है। यदि उस समय भी गढ़ व्यवस्था रही हो तो वह अपने अंतिम चरण में रही होगी। सामंती व्यवस्था के बिना व्यापार केंद्रों के रूप में ऐसे नगरों का निर्माण असंभव है। सिंधु घाटी की सभ्यता से भारतीय इतिहास का प्राचीन काल आरंभ नहीं होता। मुख्य बात यह है अब वह सभ्यता द्रविड़ है कि आर्य है या इन दोनों से भिन्न है। प्रस्तुत विवेचन के लिए ये प्रश्न गौण है। आर्य द्रविड़ संबंधी कल्पनाएं स्वयं दोषपूर्ण है। वे भाषा विज्ञान की एक अवैज्ञानिक पद्धति का परिणाम है। उसी भ्रांतिपूर्ण सांचे में हम समाज और साहित्य के इतिहास को जमा देना चाहते हैं। अस्तु वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता का जो भी समय निर्धारित हो वह गढ़ व्यवस्था वाले प्राचीन युग का अवसान काल ही माना जाएगा। यह बात सही है कि सामंती सभ्यता का प्रसार कुछ केंद्रों में हुआ तो इससे सारे भारत में वही सब व्यवस्था प्रचलित नहीं हो गई। भारत ही क्या, यूनान जैसे लघु आकार वाले देश में भी सामाजिक विकास विषम गति से हुआ था। पूंजीवादी युग में ही सामाजिक विकास विषम नहीं होता। विकास की यह विषमता सामंती युग की विशेषता भी है। पर युग का विभाजन विश्व पैमाने पर अथवा किसी देश के संदर्भ में उस नई व्यवस्था के अनुसार होता है जो अभ्युदयशील हो, विकासमान हो, जिसके प्रसार के साथ साथ पुरानी उत्पादन वितरण व्यवस्था समाप्त होती जाती हो। इस दृष्टि से 19वीं शताब्दी पूंजीवादी का युग थी। भले ही तब अमेरिकी आदिवासी गढ़ व्यवस्था में जीवन बिताते रहे हो, भारत में इस गढ़ व्यवस्था के अवशेष आदिवासी प्रदेशों में अब भी देखे जा सकते हैं। अन्य प्रदेशों में सामंती अवशेष हैं, पर भारत की मुख्य व्यवस्था पूंजीवादी है। काल विभाजन की इस दृष्टि से भारत में सामंती सभ्यता का अभ्युदय और विकास ईसा मसीह के जन्म से कम 2000 साल पहले आरंभ हो जाता है। कोई इसे मध्यकाल कहना चाहे तो कह सकता है। जब गौतम बुद्ध ने पशु बलि का विरोध किया तब उस विरोध से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था वाली सामंती सभ्यता विद्यमान है। जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को मगध और पृष्ठ संख्या 45 कोसल के व्यापारियों का समर्थन प्राप्त हुआ तब भी यह स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यापार केंद्र सामंती उत्पादन विनिमय पद्धति के विकास का परिणाम है। बौद्ध कालीन भारत सामंती भारत है। उसके निर्माण में मुख्य भूमिका लघु जातियों की है, गढ़ समाजों की नहीं। गुप्त काल में ये ह्रासमान गढ़ समाज प्रायः विघटित हो जाते हैं। वनों, पर्वतों आदि दुर्गम स्थानों में थोड़े से ही गढ़ समाज बच रहते हैं। इस प्रकार संस्कृत, पाली, प्राकृतों आदि में रचा हुआ साहित्य सामंती समाज की देन है। उस सबको मध्यकालीन साहित्य कहा जा सकता है। सबसे कठिन समस्या यह निर्धारित करने की है कि भारत में आधुनिक जातियों का निर्माण कब हुआ। जब भी इन जातियों का निर्माण हुआ हो तभी से आधुनिक काल की शुरुआत मानना चाहिए। जो लोग भारत में विभिन्न जातियों का अस्तित्व स्वीकार न करते हो, वे भाषाओं का अस्तित्व तो स्वीकार करेंगे ही। उन्हें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि किसी भी भाषा के बोलने वालों का समुदाय प्रदेश विशेष में कब संगठित हुआ। भारत की आधुनिक भाषाओं में तमिल का लिखित साहित्य सबसे पुराना है। प्रश्न यह है कि तोलकप्पियर ने जिस तमिल भाषा का व्याकरण लिखा वह किसी गढ़ समाज की भाषा थी अथवा सामंती व्यवस्था वाली लघु जाति की। आधुनिक तमिल का जाति का निर्माण कब हुआ। पूंजीवादी संबंधों के प्रसार के साथ तमिल भाषी समुदाय जाति रूप में कब संगठित हुआ।